एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी साहित्यिक पहेली पर बात करने जा रहे हैं जिसने मतलब पिछली आधी सदी से भी ज्यादा समय से दुनिया भर के रंगमंच को उलझाया भी है और प्रेरित भी किया है।
हम बात कर रहे हैं सैमुअल बेकेट के कालजयी नाटक वेटिंग फॉर गोदो की।
हाँ, और सोचिए, एक ऐसा नाटक जिसके बारे में एक आलोचक ने कहा था कि इसमें कुछ नहीं होता दो बार। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा नाटक जिसमें ज़ाहिरा कुछ नहीं होता, वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली नाटकों में से कैसे बन गया?
ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है।
आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
और ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वेटिंग फॉर गोदो कोई परंपरागत कहानी नहीं है। ये एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की राख से जन्मे उस यूरोप की आवाज है जहां पुराने सारे मूल्य, सारे विश्वास, वो
कुछ रही है, उस दौर की निराशा को दिखाता है।
बिल्कुल, ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड यानी बेतुके रंगमंच का सबसे बड़ा उदाहरण है जो जीवन की निरर्थकता को सीधे मंच पर ले आया।
बेकेट हमें कोई कहानी नहीं सुनाते बल्कि हमें एक अनुभव से गुजारते हैं।
और ये अनुभव शुरू होता है एक बहुत ही साधारण, लगभग खाली मंच से।
चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां बेकेट हमें ले जाते हैं। वो दुनिया कैसी दिखती है?
वो दुनिया बेहद वीरान है। एक सुनसान सड़क और उस पर खड़ा एक ठूंठ सूखा पेड़, बस
इतना ही।
हाँ, यही है पूरी कायनात। और इस बंजर जमीन पर हमें दो लोग मिलते हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागन,
जिन्हें वो एक दूसरे को प्यार से दीदी और गोगो बुलाते हैं।
बिल्कुल, और वे वहां किसी गोदो नाम के शख्स का इंतजार कर रहे हैं।
और ये इंतजार, यही इस नाटक का केंद्र है। लेकिन ये कोई आम इंतजार तो है नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें ठीक से ये भी याद नहीं कि गोदो कौन है, वो कैसा दिखता है या उसने आने का वादा क्यों किया था। बस एक धुंधली सी याद है कि इंतजार करना है।
तो ये बाहरी संघर्ष से ज्यादा एक अंदरूनी कश्मकश की कहानी बन जाती है ना?
एक्सैक्टली।
सवाल ये नहीं कि गोदो आएगा या नहीं,
बल्कि ये है कि जब तक वो नहीं आता, तब तक इस खाली समय का, इस खाली जीवन का क्या किया जाए।
एक्सैक्टली। उनका इंतजार असल में हम सबके इंतजार का प्रतीक बन जाता है। हम सब जीवन में किसी न किसी गोदो का इंतजार कर रहे होते हैं। शायद कोई बेहतर नौकरी, कोई रिश्ता, या
जीवन में किसी गहरे अर्थ की तलाश।
हाँ, दीदी और गोगो का ये अंतहीन इंतजार उसी मानवीय स्थिति को मंच पर जीवंत कर देता है। और इसी इंतजार को काटते हुए हमें इन दो किरदारों की असलियत पता चलती है।
हाँ, और ये दोनों पात्र भी कमाल के हैं,
जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू।
बिल्कुल। व्लादिमीर यानी दीदी, वो ज्यादा बौद्धिक है, ज्यादा जिम्मेदार।
वही है जो एस्ट्रागन को बार बार याद दिलाता है कि अरे, हमें क्यों रुकना है। वो जैसे हमारा तार्किक मन है जो हर चीज में कोई मतलब खोजने की कोशिश करता है।
सही। और दूसरी तरफ है एस्ट्रागन यानी गोगो, वो शरीर की तकलीफों में जीता है।
हाँ, उसके पैरों में हमेशा दर्द रहता है, उसे भूख लगती है, वो सोना चाहता है।
और वो बहुत जल्दी भूल जाता है कल क्या हुआ था, 10 मिनट पहले क्या बात हुई थी,
उसे कुछ याद नहीं रहता।
बिल्कुल। अगर दीदी विचार है तो गोगो शरीर है, और उसकी याददाश्त का कमजोर होना एक तरह से उसके लिए राहत भी है। वो हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देख पाता है,
जबकि व्लादिमीर निराशा का सारा बोझ अपनी यादों में ढोता रहता है।
हाँ,
उनका रिश्ता भी बहुत बहुत जटिल और सच्चा लगता है। वे एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को छोड़कर जाने की धमकी देते हैं,
पर जा नहीं पाते
क्योंकि इस बेमतलब दुनिया में वही एक दूसरे का सहारा है। उनका साथ होना ही उनके अस्तित्व को मायने देता है।
और उनके इस थमे हुए समय में अचानक एक भूचाल आता है, दो नए और भी अजीब किरदारों का प्रवेश होता है,
पोजो और लकी।
हाँ, क्रूर मालिक पोजो और उसका गुलाम लकी, जिसके गले में रस्सी बंधी है और वो भारी सामान ढो रहा है। उनका आना मंच पर एक अजीब सा तनाव और कौतूहल भर देता है।
ये रिश्ता तो समाज की कड़वी सच्चाई का एक आईना है। पोजो अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का, मतलब बहुत भद्दा प्रदर्शन करता है।
वह लकी को जानवर की तरह समझता है, उसे नचाता है, उसे सोचने का हुक्म देता है।
ये समाज में शोषण और अधीनता के रिश्ते पर एक तीखी टिप्पणी है। लेकिन बेकेट यही नहीं रुकते, बात तो तब और गहरी हो जाती है जब ये दोनों दूसरे अंक में दोबारा आते हैं।
हाँ, क्योंकि जब वे दोबारा आते हैं तो सब कुछ बदल चुका होता है। पोजो अब अंधा है
और लकी गूंगा हो चुका है।
बिल्कुल। जिस रस्सी से पहले लकी बंधा था, अब वही रस्सी अंधे पोजो का मार्गदर्शन कर रही है। सत्ता का खेल पूरी तरह पलट गया है।
ये दिखाता है कि शक्ति और नियंत्रण कितने कितने क्षणभंगुर और खोखले हैं।
और लकी का वो भाषण,
हाँ वो तो कमाल है। जब पोजो उसे सोचने का आदेश देता है तो वो अचानक बोलना शुरू करता है, लेकिन वो कोई तर्कपूर्ण भाषण नहीं होता।
नहीं, वो ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और धर्म के टूटे फूटे टुकड़ों का एक सैलाब होता है जो कहीं नहीं पहुंचता।
सुनकर ऐसा लगता है जैसे सालों के अत्याचार ने तर्क और भाषा को ही तोड़ मोड़ कर रख दिया है। आपको नहीं लगता कि ये आज की दुनिया पर भी एक टिप्पणी है, जहां सूचना का इतना शोर है कि अर्थ ही खो गया है?
ये बहुत सटीक तुलना है। और फिर हर अंक के आखिर में एक छोटा लड़का आता है
जो एक उम्मीद भरा लेकिन साथ ही दिल तोड़ने वाला संदेश लाता है
कि मिस्टर गोदो आज नहीं आएंगे, पर कल जरूर आएंगे, और ये कल कभी नहीं आता।
तो जब हम इस नाटक की बनावट को देखते हैं तो ये सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि ये गोले में घूमती है।
हाँ, दूसरा अंक लगभग पहले अंक का ही आईना है।
और यही दोहराव ही तो इस नाटक का असली मर्म है। चलिए इस चक्कर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहले अंक में क्या क्या होता है?
पहला अंक शुरू होता है एस्ट्रागन के अपने जूते से जूझने से। वो कहता है कुछ नहीं किया जा सकता,
और व्लादिमीर का जवाब भी यही होता है। ये संवाद ही पूरे नाटक की नींव रख देता है।
वे समय काटने के लिए उलझुल बातें करते हैं, बाइबल की कहानियों पर बहस करते हैं, यहाँ तक कि उस सूखे पेड़ पर लटक कर आत्महत्या करने का भी सोचते हैं,
पर कर नहीं पाते।
नहीं, यानी वे कुछ भी करने की कोशिश करते हैं सिवाय उस एक चीज के जो वे नहीं कर सकते, वहां से जाना।
फिर पोजो और लकी का तूफानी प्रवेश होता है
जो उनकी एक रास्ता को भंग करता है। पोजो खूब डींगे हांकता है, लकी को नचाता है, और फिर वे चले जाते हैं। शाम ढलने पर लड़का आता है, गोदो का संदेश देता और चला जाता है,
और फिर वो मशहूर अंत आता है।
एस्ट्रोगन कहता है तो चले,
और व्लादिमीर जवाब देता है हाँ चलो चलते हैं।
और मंच पर निर्देश लिखा होता है, वे हिलते नहीं हैं।
उनकी इच्छा और उनकी लाचारी के बीच का ये फासला मंच पर जम सजाता है, और दूसरा अंग इसी लाचारी को और गहरा कर देता है।
अगले दिन वही जगह, वही समय, बस एक फर्क है,
अब उस सूखे पेड़ पर कुछ पत्तियां आ गई हैं।
हाँ, ये क्या है? क्या ये उम्मीद का संकेत है, या सिर्फ प्रकृति का एक क्रूर मजाक कि दुनिया तो चल रही है पर तुम वहीं के वहीं हो?
ये सवाल बेकेट हमारे लिए छोड़ देते हैं। एस्ट्रागन को कल का कुछ भी याद नहीं। व्लादिमीर उसे याद दिलाने की हर कोशिश करता है और हर बार नाकाम होता है।
वे समय बिताने के लिए फिर से बचकाने खेल खेलते हैं, एक दूसरे की टोपियां बदलना, एक दूसरे को गालियां देना, और फिर फौरन सुलह कर लेना। ये सब उस खालीपन को भरने की एक बेताब कोशिश है।
और फिर पोजो और लकी की वापसी होती है, लेकिन उनकी हालत बहुत दयनीय है। पोजो गंधा है, लकी गूंगा।
और पोजो को पिछली मुलाकात याद तक नहीं। वो जीवन की क्षणभंगुरता पर एक बहुत ही मार्मिक संवाद बोलता है। वे कब्र के ऊपर बैठकर जन्म देते हैं, रोशनी एक पल के लिए चमकती है और फिर दोबारा रात हो जाती है।
ये संवाद पूरे नाटक के दर्शन को कुछ पंक्तियों में समेट देता है।
उनके जाने के बाद लैका फिर वही संदेश लेकर आता है, मिस्टर गोदो आज नहीं पर कल जरूर आएंगे।
और नाटक का अंत ठीक पहले अंक की तरह होता है। वे जाने का फैसला करते हैं पर हिलते नहीं है। पर्दा गिर जाता है और हम जानते हैं कि ये चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा।
तो जब हम इस पूरी संरचना और इन पात्रों को एक साथ देखते हैं तो हमारे सामने कुछ बहुत गहरे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं।
हाँ, अब इसकी पर्दे खोलते हैं। सबसे बड़ा विषय तो अस्तित्व की निरर्थकता का ही है। बेकेट एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं जहां ईश्वर चुप है और इंसान अपने जीवन का अर्थ खोजने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है।
और इसी से जुड़ा है उम्मीद का विषय। आमतौर पर हम उम्मीद को एक सकारात्मक शक्ति मानते हैं, पर यहाँ गोदो के आने की उम्मीद ही उनकी कैद बन जाती है।
यही उम्मीद उन्हें हर रोज उसी पेड़ के नीचे वापस ले आती है। तो क्या बेकेट ये कह रहे हैं कि कभी कभी झूठी उम्मीदें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शायद वे यही दिखा रहे हैं कि उम्मीद एक दोधारी तलवार है। वो आपको जिंदा भी रखती है और एक निरर्थक स्थिति में बांधे भी रखती है।
और यहीं पे समय और याददाश्त का सवाल भी बहुत दिलचस्प हो जाता है। एस्ट्रागन का भूलना उसे रोज रोज की निराशा से बचाता है, पर साथ ही उसकी पहचान भी छीन लेता है।
बिल्कुल, अगर आपका अतीत नहीं तो आप कौन हैं?
लेकिन इस सारी निराशा और अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण भी है, और वो है इंसानी साहचर्य की जरूरत।
हाँ, दीदी और गोगो का रिश्ता इस नाटक का दिल है। वे एक दूसरे को कितना भी तंग करें, लेकिन वो जानते हैं कि अकेले वे इस खालीपन का सामना नहीं कर सकते।
उनका एक दूसरे से बात करना, खेलना, लड़ना, यही सब उन्हें पागल होने से बचाता है। तो शायद मतलब यही निकलता है कि जब दुनिया हमें कोई बना बनाया अर्थ नहीं देती,
तो हम इंसानों को एक दूसरे के साथ में ही अपना अर्थ गढ़ना पड़ता है।
हमारा आपसी रिश्ता ही वो चीज़ है जो इस निरर्थकता को सहने लायक बनाता है।
और बेकेट ये सब कहने के लिए जिस शैली का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने आप में अनोखी है। संवाद छोटे, टूटे हुए और दोहराव से भरे हैं।
शब्दों से ज्यादा अहमियत खामोशी और ठहराव की है।
हाँ, वो खामोशी जहाँ पात्रों के मन का असली तूफान महसूस होता है। और प्रतीक, ये नाटक प्रतीकों से भरा पड़ा है।
खुद गोदो ही सबसे बड़ा प्रतीक है, क्योंकि वो कभी नहीं आता। वो हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, ईश्वर, मृत्यु, सफलता, खुशी।
वो हर उस चीज का प्रतीक है जिसका हम इंतजार करते हैं। और वो पेड़ जो पहले अंक में सूखा है और दूसरे में उस पर पत्तियां आ जाती हैं,
वो निराशा और उम्मीद दोनों का प्रतीक एक साथ बन जाता है।
यहाँ तक कि जूते और टोपियां जैसी मामूली चीजें भी गहरे अर्थ ले लेती हैं। एस्ट्रागन के जूते उसकी शारीरिक पीड़ा, जमीन से जुड़े यथार्थ का प्रतीक है।
और व्लादिमीर की टोपी, जिसे वो बार बार उतारता है, देखता है, पहनता है, वो उसके दिमाग में चल रही अंतहीन उधेड़ बुन का प्रतीक है।
ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो तर्क से ज्यादा एहसास के स्तर पर हमसे बात करती है।
और इस एहसास में त्रासदी और कॉमेडी का अद्भुत मिश्रण है। पात्रों की हरकतें किसी सर्कस के जोकरों जैसी हैं, हमें उन पर हंसी आती है।
लेकिन अगले ही पल हमें एहसास होता है कि हम उनकी कितनी गहरी पीड़ा पर हंस रहे हैं। बेकेट हमें दिखाते हैं कि इंसानी हालात एक ही समय में हास्यास्पद भी है और दुखद भी।
तो अंत में ये नाटक हमें कोई आसान जवाब नहीं देता, ये हमें हमारे ही सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है।
शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम सब अपने जीवन में किस गोदो का इंतजार कर रहे हैं।
और शायद ये नाटक यही सिखाता है कि जवाब मंजिल में नहीं, सफर में है। गोदो आए या ना आए, जरूरी ये है कि हम इंतजार के दौरान एक दूसरे का हाथ थामे रहें और हर हाल में टिके रहने का साहस दिखाएं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सालांच आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।